درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں اور دین کے احکام کو بیان کرتے ہیں تو دین کے اندر فوری طور پہ ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے دو حصے ہوتے ہیں. ایک دین کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے, اور ایک دین کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے. مثال کے طور پر ہم لوگوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کہ میں وضو کیسے کروں, پانی کہاں پہ ڈالوں, اس کا تعلق دین کے ظاہر سے ہے کہ مثلا میں چہرے پہ پانی ڈالوں گا, ہاتھ پہ پانی ڈالوں گا, مسح کروں گا. اس کا باطن کیا ہے؟ تو اس کا باطن یہ ہے کہ مثلا جب میں چہرے پہ پانی ڈالنے لگوں تو اہل بیت نے ہمیں کہا کیا دعا پڑھو, کہا دعا کرو کہ خدایا قیامت کے دن جب چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں تو میرے چہرے کو نورانی کر دے. پانی ڈالتے وقت یہ کہو, سیدھے ہاتھ کے اوپر پانی ڈالوں تو کیا کروں؟ اب ایک اس کی ظاہر کی ڈیٹیل ہے کہ مثلا آپ نے کونی سے ڈالنا ہے, اوپر سے نیچے کرنا ہے, کسی جگہ سے پانی بچنا نہیں چاہیے, یہ سب اس کی ظاہر کی ڈیٹیلز ہیں, ویری بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تم دعا مانگو کہ خدا میرے نام اعمال کو میرے سیدھے ہاتھ میں دے دا. اچھا, اب ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی ایک تو وہ ہے جو ظاہر سے ہے, میری باڈی سے ہے, پانی سے ہے. اچھا, دوسرے جو جملے چل رہے ہیں ان میں پانی کا کوئی تذکرہ نہیں آ رہا, ان میں باڈی کا بھی کوئی تذکرہ نہیں آ رہا ہے, سب کا سب سمبولک ہے. مثال کے طور پر جب پاؤں کے اوپر مسا کرے تو دعا کرے کہ خدایا پل صراط پر میری قدموں کو مضبوط کر دے. جب پل صراط دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے؟ آخرت میں. بار بار چیزیں ظاہر سے باطن کی طرف ریفر ہو رہی ہوتی ہیں. یہ دین کے دو پہلو ہیں. اچھا, جس طرح یہ دو مسئلے ہیں, ظاہر کا تعلق ہے, باطن کا تعلق ہے. اچھا, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر کسی کا ظاہر اچھا ہو تو باطن بھی اچھا ہوگا, نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. ہاں, اچھا ہے ظاہر کو اچھا کرے تاکہ باطن بھی اچھا ہو جائے, لیکن گارنٹیڈ نہیں ہے. باطن کا تعلق کس چیز سے؟ باطن کا تعلق ہم کہتے ہیں نیت سے, جو کچھ وہ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے اس سے. اور دین مسلسل یہ کام کرتا ہے کہ ہمارے لیے باطن کو بار بار بیان کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک بیان ہے اور اس کو میں بیان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دین ہمیں کچھ چیزیں ایسی سکھاتا ہے جو اگر دین نہ سکھاتا شاید بہت ہزار سال کے بعد, دو ہزار سال کے بعد, مدت کے بعد انسان کو خود بھی کچھ سمجھ میں آ جاتا. مثلا دین نے ہمیں سکھایا سچ بولو. ابھی دنیا کو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ دنیا کو بھی سمجھ میں آتا ہے, سچ بولو. دین نے ہم سے کہا صفائی نصف ایمان ہے, دنیا کو بھی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ دنیا کو بھی سمجھ میں آتا ہے صفائی نصف ایمان. وہ کہتے ہیں ہاں بھائی صفائی امپورٹنٹ ہے. تو کچھ چیزیں دین ہمیں ایسی سکھاتا ہے جو انسان کی عقل بھی بہت سالوں کے بعد سمجھ جاتی. البتہ یہ میں بتا دوں کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ صفائی اچھی چیز ہے دین کے بغیر, ان کو یہ کہتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں لگا ہے ابھی, ان کو 100-200 سال لگے ہیں ابھی, اور باقی جو پیچھے کی مدت تھی ان کے نزدیک صفائی کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اور میں ایک ڈسکرپشن دیکھ رہا تھا جس میں کسی یورپین نے مسلمانوں کو ڈسکرائب کیا تھا. تو وہ کہتا تھا یہ مسلمان بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں, ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں, یہ لوگ اپنے چہرے پہ سے پسینہ صاف کرتے رہتے ہیں. تو وہ تعجب سے بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا, یہ صرف مسلمان کرتے ہیں. ابھی کیس الٹا ہوتا جا رہا ہے, ایک علیحدہ مشکل ہماری. تو کچھ چیزیں دین ایسی دیتا ہے جو ہم لوگوں کو دین بتاتا ہے, دین نہ بھی بتاتا اپنی عقل لڑاتے ہیں, ہزار سال کے بعد, 2000 سال کے بعد سیکھ لیتے. کچھ چیزیں دین ایسی دیتا ہے جو انسان لاکھ سال بھی لڑائے عقل نہیں سیکھ پائے گا, نہیں سیکھ سکے گا. وہ چیزیں کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں زیادہ تر وہ ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے. اگر دین نہ بتاتا ہم سیکھ نہیں سکتے تھے. اب میں مولا کا ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بہت خوبصورت قول ہے. یعنی میں نے اپنی زندگی میں جو اقوال سنتا ہوں تو اس میں یہ قول آپ نے بہت دفعہ سنا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ قول. امام کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد. فما الناس نیام اذا ما تنتبه. لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. کتنا خوبصورت قول ہے یہ. اور اس کی جو بہت اچھی خوبصورتی بیوٹی ہے وہ اس کانٹرڈکشن کے اندر ہے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اور امام کے قول میں آتی. اب آپ تصور کریں آپ مینہٹن میں کھڑے ہوں, وہاں لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, ایک سے ایک ملینر بلینر یہاں سے وہاں جا رہے ہیں, جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان کی بھی تنخواہیں ملینز میں ہیں, دنیا کے شارپسٹ لوگ وہاں پر گھوم رہے ہیں, اور مثال کے طور پر دنیا کی ایک ایک کیلکولیشن ان کے سامنے, پتہ نہیں کون کون سی رپورٹس ڈیلی پڑھتے ہیں, اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ سو رہے ہیں, یہ سو رہے ہیں. تو ہمارا جیسا آدمی کہے گا مولا یہ دنیا کے سب سے زیادہ ہوشیار انسان ہیں جو یہاں پہ کھڑے ہیں, اتنے ہوشیار ہیں یہ ایک ایک دن میں کہہ کے ملین ڈالر بنا لیتے ہیں. اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. فرمایا جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. اچھا اب اس قول کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی, کیونکہ قول اس کا قول ہے جو آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہے. یا اللہ, اس کا قول ہے, اس کا قول ہے کہ حق جس کے پیچھے جاتا ہے وہ حق کے پیچھے نہیں جاتا, حق اس کے پیچھے جاتا ہے. تو اس کے قول کے اندر سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ حق کے سوا کچھ نہیں ہوگا, حق ہوگا. اچھا اب انہوں نے فرمایا لوگ سو رہے ہیں مریں گے تو جاگ جائیں گے. جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا سویا ہوا انسان مرا ہوا ہوتا ہے؟ نہیں, سو رہا ہے اس کا مطلب ہے باڈی تو اس کی الائیو ہے, صرف ایک مشکل ہے اس کی سینسز کام نہیں کر رہی ہیں. ریالٹی کو جو اس کے سراؤنڈنگ میں ہے وہ فیل نہیں کر سکتا ہے. تو مثلا اگر میں سو رہا ہوں اور کوئی آواز نہ نکالے, کوئی میری باڈی کو نہ ہلائے اور پورا گھر اٹھا کے لے جائے, مجھے نہیں پتا چلے گا. ہاں اگر باہر ٹھنڈا ہوا پھر میری باڈی کو ٹھنڈک لگی تو شاید جاگ جاؤں گا, ورنہ مجھے نہیں پتا چلے گا. تو سوتا ہوا انسان کون سا انسان ہے؟ وہ جس کو ریالٹیز کی سینس نہیں بنتی. اور جاگا ہوا انسان کون ہے؟ جس کے بارے میں چانس ہوتا ہے کہ وہ ریالٹیز کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے. تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ تم لوگ جو دنیا میں گھوم رہے ہو نا, تم لوگ ریالٹیز کو پرسیو نہیں کر پا رہے, تم ریالٹیز کو نہیں سمجھ پا رہے. جب مرو گے تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی تم مرو گے تمہیں کچھ ایسی آنکھیں ملیں گی جن سے تم ان ریالٹیز کو دیکھ لو گے جن کو ابھی نہیں دیکھ رہے. بہت سادہ سی بات ہے, اگر کوئی مجھ سے کہے بھائی اس کو بتائیں اب کیسے ہو سکتا ہے, بہت سادہ سی بات ہے. ہم لوگ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ابھی تو کافی بلینک اسپیس ہے ہم لوگوں کے درمیان, انسانوں کے علاوہ بھی کچھ ہے یہاں پر یا نہیں ہے؟ دیکھا آپ نے؟ کب دیکھیں گے؟ جب مریں گے تو کوئی فرشتہ چھپا نہیں رہے گا, سب سامنے ہوگا. ہم لوگ تو اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پا رہے. ہم لوگ آئینے میں اپنے آپ کو کیا دیکھتے ہیں؟ باڈی, روح دیکھتے ہیں؟ تو جو اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہو وہ باقی کو کیا دیکھے گا؟ تو کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہے ہم تو بھائی, تو کہانی ایسے ہی چل رہی ہے. تو یہ جو دین کا چیپٹر ہے یہ بڑا خطرناک چیپٹر ہے. دین کہتا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے کچھ ہے اور تمہارے باطن کے پاس سامنے بھی کچھ ہے. اب اگر تم نے کام کرنا ہے تو ایک کام کرو, اور یہ آئے کریمہ قرآن کریم کی بڑی عجیب آئے کریمہ ہے, فرمایا موتو قبل ان تموتو, مرو اس سے پہلے کہ موت آئے. یہ کون سی موت ہے؟ امام نے فرمایا تھا لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگیں گے. اچھا کچھ لوگ اپنی فزیکل ڈیتھ پہ مرتے ہیں, कुछ लोग अपनी दुनिया में अपने इरादे से पहले मर जाते हैं, ये कौन से लोग हैं? फिजिकल डेथ से पहले अपने इरादे से मर जाते हैं। क्या मतलब मर जाते हैं? देखना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को अलाइव कर लेते हैं एक और सेंस के अंदर। अब ये बहुत बड़ा एक टास्क है जो हम लोगों के सामने है। हम में से बहुत सारे लोग इस फील्ड को कंपटीशन में नहीं ले रहे, कह रहे हैं हमारा मामला नहीं है। हमारा मामला क्या है? हमारा मामला कुछ और है। दीन कहता नहीं तुम्हारा मामला है, ये तुम्हें फेस करना पड़ेगा। अब इसको किस सेंस में लेना चाहिए, किस तरीके से समझना चाहिए, तो मैं एक दो बातें और आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बस ये जो अभी तक बात कही मैंने आपसे वो ये कि भाई यहां दो दुनिया है, एक वो दुनिया है जो हमें सामने सामने नजर आती है, एक वो दुनिया है जो इस दुनिया के पीछे चल रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब हम मरेंगे तो शुरू होगी, नहीं, अभी भी है, हम देख नहीं पा रहे, अभी भी है हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि इमाम ने यही फरमाया ना, लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तो जाग जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो जो दुनिया है वो बंद हुई भी है। अब एक और मसला है, मैं जो अपनी दुनिया में स्ट्रगल कर रहा हूं, कोशिशें करता हूं, मेरी कोशिशें जाहिर पर होती हैं ज्यादातर या बातिन पे होती हैं? हम लोग ज्यादातर जाहिर पे कोशिश करते हैं। अब उसकी एक मिसाल और, ताकि और थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल फेस से हम बाहर आ जाएं। तो जनाब अली एक आदमी था, वो खलीफा था अपने दौर का, बनी अब्बास के खलीफा में से था, बनी अब्बास के खलीफा। तो उस बनी अब्बास के खलीफा ने अब उसके दौर में एक आलिम था, उसको बुलाया और आलिम को बुलाकर कहा कि मुझे नसीहत करो, मुझे नसीहत करो। उसने कहा कि मैं नसीहत तो करूंगा, लेकिन तुम बताओ कि मैं तुम्हें उसमें से नसीहत करूं जो मैंने पढ़ा है, या उसमें से नसीहत करूं जो मैंने खुद देखा है। ये भी एक गहराई की बात है ना, कि इंसान पढ़ता तो बहुत कुछ है, देखता कम है। तो उसने पूछा उसमें से नसीहत करूं जो पढ़ा है, या उसमें से नसीहत करूं जो देखा है। तो खलीफा ने कहा उसमें से नसीहत करो जो देखा है, क्योंकि जो तुम पढ़ के नसीहत करोगे उस पर मेरा असर कम होगा, मेरे ऊपर असर कम होगा, जो तुमने देखा है उसका मेरे ऊपर असर ज्यादा होगा, तो देखे में से नसीहत करो। उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज, बनी उमैया का खलीफा, आपको बताइए 98 हिजरा के करीब मरा था, उन बनी उमैया के खुलफा में से था जिसने बहरहाल कुछ नेकियां भी की हैं, और इससे बढ़कर उसके लिए नेकी क्या कि उसने फिदक को अहले बैत तक वापस पहुंचाया था। उसके बावजूद इमाम ने फरमाया था जब इसका जनाजा उठ रहा था कि लोग तो इसको दुआएं कर रहे हैं लेकिन आसमान वाले लान कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि इसने अहले बैत का हक पार्शली वापस किया था, जबकि हक सिर्फ फिदक का बाग नहीं था, हक पूरी खिलाफत थी, पूरी खिलाफत थी, इसको भी पता था, लेकिन पार्शली वापस करके अपने आप को सेटिस्फाई करना चाह रहा था। तो ये आलिम कहता है कि मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज को मरते देखा है, जब वो मरा तो उसके पास से पता नहीं 18 दीनार निकले थे और उसकी 12 औलादें थी। नंबर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, मेरी बहुत अच्छी मेमोरी इस मामले में नहीं है, लेकिन मसलन 12, 18, 20 इतने दीनार थे, और औलाद कितनी थी? मसलन 10 से ऊपर औलाद थी। हर एक को कितना मिला? एक एक दीनार, डेढ़ डेढ़ दीनार। कहने का ये मैंने देखा है, कहने का मैंने मरने से पहले इसकी औलादों को हमारी दानिश में मिलियनर बनते देखा है। कहने का मैंने देखा है कि ये जब मरा तो इसने अपने बच्चों के लिए एक एक दो दो दीनार छोड़े थे, लेकिन जब ये मर गया इसके बच्चों को खुदा ने इतना नवाजा है कि मैंने उनको मिलियनर बनते देखा है। उसके बाद उसने एक और बादशाह का नाम लिया। कहने का जब वो मरा तो मैंने उसकी एयर्स में, इनहेरिटेंस में मिलियंस ऑफ दीनार देखे, और कहने लगा मैंने उसके बच्चों को भीख मांगते देखा है, भीख मांगते देखा है मैंने। तो खलीफा रोने लगा, कहने लगा हाँ जो जाहिर में चीज होती है उसका कोई एतबार नहीं, जाहिर का एतबार नहीं। अब इसकी एक और मिसाल अर्ज करता हूं, अल्लाह के नबी का एक वाकया है, बहुत खूबसूरत वाकया, वो हमें बहुत ज्यादा गाइड कर सकता है। और चूंकि हमारी आज की महफिल में जवान कम और बूढ़े ज्यादा हैं तो उससे और फायदा होगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा थे, उनके पास एक आदमी आया और उसने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, फलानी आदमी मर गया है और वो काफ़ी दौलतमंद था। वो जो मर गया है उसने पूरा एक गोदाम छोड़ा है गल्ले और अनाज का, उसमें कहीं वीट है, कहीं पे राइस है, कहीं पे उसमें डेट्स हैं, उसने वो सारा छोड़ा है और आपसे कहा है कि आप उसको मुस्तहकीन में तकसीम कर दें। मरने वाला मर गया है और पूरा एक वेयर हाउस छोड़ कर गया है कि आप वो सब इंसानों में तकसीम कर दें, तो लोग उसकी तारीफें करने लगे कि भाई कितना अच्छा आदमी था, इतना सब कुछ छोड़ कर गया, अल्लाह की राह में दे दिया, ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है जाओ तकसीम करो, तो वो तकसीम करवा दिया। जब तकसीम हो गया तो अल्लाह के रसूल ने किसी से कहा कि जाकर उस वेयर हाउस में झाड़ू लगाओ ताकि अगर उसकी इनहेरिटेंस में कोई चीज़ बच गई है तो वो भी तकसीम कर दो, ऐसा ना हो वो हमारे सर पर आ जाए। तो किसी ने जाकर झाड़ू लगाई तो अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा अल्लाह के नबी कुछ नहीं निकला। अल्लाह के नबी ने कहा कुछ नहीं था? कहने लगा नहीं, ये एक खजूर निकली है, छोटी सी पतली सी, ड्राइड बिल्कुल। अल्लाह के नबी ने हाथ में लिया और एक जुमला कहा, बहुत ज़बरदस्त जुमला, हाथ में लेकर कहा अपनी ज़िंदगी में ये सदका करता तो इस वेयर हाउस से ज़्यादा सवाब मिलता। अगर अपनी जिंदगी में ये खजूर सदका करता तो इसको जो सवाब मिलता ये पूरे वेयर हाउस को सदका करने से ज्यादा मिलता। क्यों? ये जब जिंदगी में करता ना तो इसको शायद इस्तेमाल कर सकता था, अब ये खुद मर गया है ना तो इसका जो उर्दू में एक मुहावरा कहते हैं, अभी तो हमारे यहाँ कारपेट्स होते हैं, फ्लोर्स होते हैं, वुडन मार्बल्स, पहले ज़माने में कच्ची मिट्टी होती थी, तो कच्ची मिट्टी पे अगर तेल गिर जाता था, मतलब सरसों का तेल, नारियल का तेल, तेल गिर गया तो उसका क्या होगा? अब जज्ब हो गया, मिट्टी में गया। तो एक आदमी की शीशी गिर गई, उसका शीशा था, शीशे की बोतल थी जिसमें तेल था, वो गिर गई, टूट गई, अब वो तेल नीचे जाने लगा तो फौरन कहने लगा हजरत अब्बास की नज़र करता हूँ। जो आदमी मरने के बाद सदका करता है ना वो यही कर रहा है, वो यही करता है, क्योंकि मैं तो अब इस्तेमाल नहीं कर सकता तो अब मैं अल्लाह की राह में देता हूं, तो अब ना भी देता तो तू क्या कर लेता। अच्छा ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ? ये वही जाहिर और बातिन का मसला है। हम लोग समझ रहे हैं दीन, अल्लाह का दीन बैंक अकाउंट की तरह है, इतना क्रेडिट इतना डेबिट, नहीं ऐसा नहीं है। अल्लाह का दीन कुर्बानी पे बना है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम लोग नेकी को पा ही नहीं सकते जब तक उसमें से न दो जो तुम्हें अजीज है। मरने के बाद क्या अजीज है? वो जो गोदाम पड़ा है वो मैयत को क्या अजीज है? अब उसके क्या काम आएगा? तो क्या करता है, क्या कहता है, जब मैं मर रहा हूं तो अब क्या कर दो? अल्लाह की राह में सदका करो। खुदा कहते नहीं, इसका सवाब इतना सा मिलेगा, जिंदगी में करो। और सारा गेम इसी के ऊपर चल रहा है। हम लोग दीन का जाहिर देख रहे हैं, खुदा कुछ और देना चाह रहा है। अब मिसाल के तौर पर हम और आप, हम जानते हैं, हम लोग सदका खैरात करते हैं। सदका खैरात करने के पीछे नीयत क्या होती है? सदका खैरात की इंपॉर्टेंस कम है, नियत की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। सदका खैरात की इंपॉर्टेंस सामने सामने में देखो इतनी नहीं है, असल मसला है किस नियत से किया है। एक्स्ट्राज में से किया है, जो मेरा कोर था उसमें से किया है, जो सब्सटेंशियल था मेरे लिए उसमें से किया है या फालतू फालतू चीजों में से किया है, क्या किया, ये सब इंपॉर्टेंट है। और कल जो मैं अर्ज कर रहा था उसका कनेक्शन भी यहीं पर आएगा। जो लोग इमामत के नाम पर जिंदगी गुजारते हैं वो सिर्फ एक्स्ट्राज नहीं देते, वो अपनी लाइफ के कोर में से इमामत को देते हैं, वो उस कोर में से दे रहे होते हैं, और उस कोर में देने की वजह से वो इमामत का कुर्ब भी लेते हैं। एक्स्ट्राज देके मामला हल नहीं होता इस तरह से। तो मिसाल के तौर पर ये जो मैं आपकी खिदमत में सारी चीजें आराइज पेश की, जाहिर का फर्क, बातिन का फर्क, सबसे पहले मुझे सोचना पड़ेगा मैंने दीन के लिए अपनी लाइफ की सब्सटेंशियल्स को रखा है या एक्स्ट्राज को रखा है। मैंने दीन के लिए क्या रखा है? तो मिसाल के तौर पर मुझे एक बात पता है, मेरी जिंदगी में भी ऐसे ही है, मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं सबको, मुझे कि अगर प्रोग्राम वीकेंड पे ना हो तो लोग आधे भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दीन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम में होना इंपॉर्टेंट है, वरना हम नहीं कर पाएंगे। ये हम सबकी मुश्किल है, हमें मैनेज कैसे करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा हमारी लाइफ की ट्रू स्ट्रेंथ कहां पर है, वो दीन के काम आ रही है नहीं आ रही है। वरना अगर आप तसव्वुर करें, ये मैं इसको समेटते हुए आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जो पहले दिन मैंने आपसे अर्ज किया था, अगर सब कुछ सही होता ना तो गैबत खत्म हो चुकी होती। सब कुछ सही होता तो गैबत क्यों है? गैबत इसलिए है, जो मुझे समझ में आता है मेरे जैसे इंसान को, कि भाई कि मैं अपने आप को देखता हूं ना, कि मिसाल के तौर पर मैं तबलीग करने कहां जाऊंगा, जहां चैलेंज ज्यादा होगा या जहां चैलेंज कम होगा। तो मिसाल के तौर पर मैं तबलीग करने वहां जाऊंगा जहां चैलेंज कम होगा, और जहां मुझसे कोई कहे कि भाई ऐसी जगह पे जाओ जहां ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मैं पहली कोशिश क्या करूंगा, कहूंगा वहां चला जाता हूं भाई जहां सब कुछ है, वहां क्यों जाऊं। अगर हम दीन के साथ इस तरह बिहेव करेंगे फिर दीन की रियलिटी तक नहीं पहुंचेंगे, फिर दीन की सरफेस पे रहेंगे। इसका कोर मुश्किल लोगों के लिए बना हुआ है। इस खातिर में समय तम्मार दो तीन नहीं है, एक ही है। इस खातिर गैबत को अब 1100 साल हो गए हैं। अगर हमें सिर्फ गैदरिंग्स की जरूरत होती तो गैदरिंग्स तो पहले भी कम नहीं रहती थी, गैदरिंग्स पहले भी हो जाती थी। असल मसला यहां पर है, हमें लाइफ का कोर देखना पड़ता है, और अब इस कोर को और ज्यादा सामने लाने के लिए कि भाई हम अपने जिंदगी में से कुर्बान करें, हमें फिर यह देखना पड़ता है भाई ऐसा खुदा सवाब देता किस पर है। जैसे अभी मैंने मिसाल में कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा भाई खुदा सवाब उस वक्त देता है जब तुम अपनी जिंदगी में जरूरत में से निकाल रहे होगे, वरना जब तुम्हें कोई जरूरत नहीं रही तुम मर गए हो उसके बाद कहो इसमें से दे दो, तो खुद के कोई फायदा नहीं होगा फिर, या फायदा बहुत कम होगा। तो ये बात हो गई। अब इससे हम क्या करें, आप हमेशा, मैं और आप हमेशा देखें हमारी दीन का कौन सा पार्ट ऐसा है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? अपनी कंफर्ट की वजह से, क्योंकि ट्रबल नहीं लेना चाहते, आसान आसान चलना चाहते हैं। हमेशा इसको देखें। तो मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसके लिए पैसा देना आसान है, वो कहे मैं पैसा तो दे रहा हूं, नहीं फिर तुम दीन की हकीकत पे नहीं पहुंचोगे, फिर तुम्हारी हकीकत कहीं और रखी हुई होगी। अब एक आदमी उसके लिए बोलना आसान है, मतलब मैं बोल रहा हूं, देखो बोलना आसान है मेरे लिए क्योंकि 30 साल से बोल रहा हूं, इसलिए बोलने का एक्सपर्ट बन गया हूं मैं। अब मैं कहूं मैं दीनदार आदमी हूं, मैं दीन के लिए कुर्बानी देता हूं, देखो मैं एक एक घंटे बोलता हूं, ओ भाई तो काम ही है ये। मुश्किल कब आएगी? मतलब मुश्किल उस वक्त आएगी जब मुझसे कहो कि कोई दीन के नाम पर जाओ किसी जालिम का गिरेबान पकड़ो। खुदा अपने अंबिया को जालिम का गिरेबान पकड़ने का चैलेंज क्यों देता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतनी इबादतें करने के बाद कोहे तूर पे पहुंचे, कोहे तूर पर पहुंच गए, नबूवत मिल गई, अल्लाह ने मुआवजे दे दिया, उसके बाद क्या हका, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा, जाओ फिरौन को पकड़ो ये बहुत बाकी है। भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते बनी इसराइल के पास मस्जिदें नहीं, मस्जिदें बनाओ, कहा नहीं, कॉज को जाके पकड़ो, रूट को जाके पकड़ो, रूट ये जालिम है इसे पकड़ो, कॉज को देखो। दीन खुदा सरफेस पे काम नहीं करता है, दीन खुदा डेप्थ में जाके काम करता है। उसको पता है लोगों के जहन गुलाम रहेंगे ना, इनको नमाजें भी आजाद नहीं कर सकेंगी। फिर जहन को आजाद करवाता है। ये जो सैयदुश्शुहदा का मारिका है, सबसे बड़ा मारिका जो मुझे सैयदुश्शुहदा का समझ में आता है, अलबत्ता जाहिर है कि हम पूरी हकीकत तो नहीं समझ सकते, जो समझ में आता है वो ये कि सैयदुश्शुहदा ने इंसानों को आजाद होना सिखा दिया, गुलामी से निकाल दिया। अब मिसाल के तौर पर मेरे सामने एक जालिम है, उसके पास बड़ी ताकत है, मैं जानता हूं अगर मैं इसके सामने कोई बात बोलूंगा ये मुझे मारेगा, और अगर मैं इमाम का मानने वाला हुआ तो मैं क्या कहूंगा? इमाम ने भी तो आवाज उठाई थी, क्या हुआ था? मारा था ना, ठीक है, मर लेंगे। और इतना सैयदुश्शुहदा ने कारनामा किया, मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा लंबे लंबे लेक्चर्स दे चुका हूँ पहले और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। मुझे कि भाई मसलन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में गिरे तो जले या नहीं जले? नहीं जले, आग बुझ गई। बल्कि आग भी जलती रही, हज़रत इब्राहिम को नुकसान नहीं पहुंचाया उसने, लेकिन हज़रत इब्राहिम नहीं जले। जब हज़रत इस्माइल को कुर्बान करने लगे तो हज़रत इस्माइल ज़िबा हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। जब लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने लगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़े या नहीं चढ़े? नहीं चढ़े, उनको खुदा ने उठा लिया। तो मैं देखता था जब भी अल्लाह की हुज्जत और जालिमों का मुकाबला होता है, खुदा अपनी हुज्जत को बचा लेता है। जब फिरौन और जादूगर आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, फिरौन के जादूगरों ने अपने सांप और रस्सियां फेंकी, जो कुछ भी किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने बचा लिया। तो मैं सोचता था कि हर दफ़ा खुदा अपनी हुज्जत को बचाता था, सैयदुश्शुहदा क्यों शहीद हुए? सैयदुश्शुहदा क्यों शहीद हुए? हज़रत इस्माइल बच गए, अली असगर ज़िबा हो गए। या अल्लाह, अब समझ में आता है, खुदा ने मुताला हज़रत इब्राहिम से कहा था, ए इब्राहिम इसके बदले में हम बड़ी कुर्बानी दिलवाएं। बड़ी कुर्बानी वो नहीं है जिसमें मैं दीन का नाम लूं और बच जाऊं, बड़ी कुर्बानी वो है जिसमें मैं दीन का नाम लूं और मर जाऊं, वो बड़ी कुर्बानी है। हम लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं, देखो हम अहले बैत का नाम लेते हैं ना, देखो हमारे माल में कितनी बरकत आई हुई है। अहले बैत का नाम लेके माल में बरकत आए, ये बड़ी इज्जत की बात है, या अहले बैत का नाम लूं और उनके नाम पे जान दूं वो बड़ी इज्जत की बात है? क्यों धोखा दें अपने आप को? अच्छा, अब हम लोगों ने एक और काम किया हुआ है, हम लोगों ने एक काम किया हुआ है, हम वो लोग हैं जो अहले बैत के नाम पे पैसा देंगे, और जान कौन देगा? दूसरे दें ना, जिनके पास पैसा नहीं है वो जान दे दें। तुमने छोटा काम लिया अपने लिए, बड़ा काम लिया, छोटा काम लिया, ये हम लोगों की मुश्किल है। अब मैं मुझे मुमकिन है कोई क्या मौलाना क्या चाह रहे हो, सब छुरियां लेके बाहर आ जाएंगे? नहीं, ये नहीं चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब दीन के नाम पे जान खतरे में पड़ती है तो हम फिर वहां पर भी रुकें, फिर वहां पे भी रुकें, उधर क्यों भागते हैं फिर? मैं वहां पर भी आओ फिर, अगर वाकई दीन के नाम पे इज्जत चाहिए तो जान बचाने में या जान देने में है? वो जान देने में है, अगर हमें वाकई दीन पर यकीन है, वो इसमें थोड़ी है कि जान बचा के भागो फिर। हाँ, मसलन कोई क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को खुदकुशी में डाल दो। हाँ, मैं कबूल करता हूँ खुदकुशी में डालना अच्छा नहीं है, लेकिन बाज़ जगहें आती हैं जहां पर दीन के नाम पर मुकाबला करना पड़ता है। दीन के नाम पर इज्जत चाहिए या बेइज्जती चाहिए? इज्जत चाहिए, सबको इज्जत चाहिए। अच्छा, बाज़ जगह पे आती हैं जहाँ दीन का नाम लेने पर थोड़ी बेइज्जती भी उठानी पड़ती है, फिर क्या करेंगे? अब सादा सी एक बात है, करबला की सबसे बड़ी कुर्बानी, मैंने कल परसों मसाइल में अर्ज किया था, मसाइब में, करबला की सबसे बड़ी कुर्बानी जो मुझे समझ में आई है वो बंदे शहीद होना नहीं है। अब मैं तुमने मसाइब के नहीं कहना चाहता, अभी चंद मिनट इंग्लिश में बोलूंगा, सबसे बड़ी कुर्बानी बाजारों में जाना था। सबसे बड़ी कुर्बानी यह थी कि सैयदुश्शुहदा का कोई साथ नहीं दे रहा था, इमाम फिर भी हक का परचम लेकर खड़े रहे, ये बड़ी कुर्बानी थी। अपनी इज्जत, अपने एहतराम को खतरे में डाल देना, ये बड़ी कुर्बानी हक की खातिर। तो ऐजान मोहतरम हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो थोड़ा सा उस चैलेंज को भी ले जिसको हम नहीं लेना चाहते, वरना ये छोटे मोटे चैलेंजेस ये भी अच्छा है, कम से कम रास्ते पर तो हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा मसलन को मजलिस में आइए रास्ते पे नहीं है ये इसका कोई फायदा नहीं है, नहीं बहुत फायदा है, कल तो फिर ये भी नहीं होंगे तो क्या होगा, नहीं इसका भी फायदा है, लेकिन इससे आगे दीन ले जाना चाहता है, दीन इससे आगे पहुंचाना चाहता है। दीन कहां पहुंचाना चाहता है? दीन मुर्दा लोगों को कहता है जो मर जाते हैं ना, अल्लाह तुम्हें मगफरत करेगा, लेकिन शुहदा को क्या कहता है? शुहदा का मकाम है, फरमाता है इनके बारे में सोचना भी नहीं कि ये मर गए, नहीं मरे नहीं है, जिंदा है सब, मकाम है। बड़े वाकयात हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमेशा दीन में थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपनी जगह से थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करें। और ये दीन के अंदर सिर्फ रिचुअल्स नहीं है बल्कि दीन के अंदर ट्रू स्पिरिट है। मैं चंद जुमले इंग्लिश में इसी स्पिरिट वाली बात को लेकर आगे बढ़ाता हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, and both these practices were targeting a spiritual experience. Now, what is this spiritual experience? We have pleasures and experiences which are connected directly with our body, material body. So if you have a very good dinner, it's a very good experience, pleasure, but what type of pleasure? It's a material one. So if you have a pleasure by having a very good dinner and then being father, you have a pleasure watching your children growing, developing, getting success. What type of pleasure is this, the second one? It may not be material, but it is a spiritual experience. Now, we pray and we fast. We do namaz, Allahu Akbar, ruku, sajde, salam, tashahud, that's all. Is it with spiritual experience or without spiritual experience? Most of the times, our prayers are without spiritual experience. We don't have it. Now, there's a problem. There are type of feelings which you cannot convey in words. One has to experience. You cannot convey in words because this is nothing to do with listening and saying. It is something else. So some type of foods or fruits which you cannot find in a region, if you want to explain them, what type of fruit is this? And for example, that person has not tasted it yet. So I really get in trouble when someone has not tasted Pakistani mango and I wanted to tell them that what type of mango is this? They don't know it. The only way is for me is to bring a Pakistani mango, put it in his mouth and tell him, okay, taste it now. And then you will know that it is not apple. It is not grape. This is something else. Now, spirituality is in the same way. You have to taste this spirituality. And two type of practices which I yesterday emphasized, this, they were just to give a taste of spirituality beyond just physical gestures. You can have same taste of spirituality in your regular prayers 5 times a day, and in your namaz shab too, but I fear that most of the time we do prayers without having this experience. So I, to give an exceptional experience, I thought this might help a lot of people have a 2-minute sajda while talking to Allah subhanahu wa ta'ala. And the second one was how to recite tasbih. And I said, okay, just a bit slow, and thinking about the meaning of tasbih, Allahu Akbar, Alhamdulillah, and Subhanallah, what are the meaning, and reciting it as your heart is saying these words. And I'm sure if any one of you here experienced it, I'm sure that some sort of experience would have been performed there. Now just going a bit ahead, utilizing the same rule of spirituality in our life, I'm sharing and the rule, and it worked for me, and I hope if it worked for me, then it will work for a lot of people, inshallah. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Because I've crossed 50, so after 40, normally in Pakistan at least, we look downward. We are going down after 40. Because, you know, life expectancy in Pakistan is not that high as you have here. So after 40, we start thinking about going down. And after 50, then you better start digging. It's too close now. No, you can have a very good life even after 70 or 80 or 90. Inshallah, live a long life. Not for me. I want to die quick. With shahada, inshallah. So I was thinking how to be happy. How to be happy. Because I realized that if you are happy, you can live a very good life. And if you're not happy, then nothing can help. Nothing can help. And you have seen it very well in this Western society. And in Asians too, yes, of course. Those who have a lot of things, they die of overdose. Why? If you have a lot of things, why you're not enjoying your life? Why they have addictions? So for example, if I have a wonderful car, for example, a good home, and this and that, blah and blah, and then I prefer to sleep for a very long time. Why? Enjoy your life. And not only to sleep, but to sleep a very long time, and I do my dose more than what I had to do, and then die. It means obviously they are not getting pleasure from their life. Very obviously. So I thought about it, how to be happy in your life. Having something or not having something. It is one of the beautiful meanings in Islam. One of the very beautiful meanings in Islam, that one who is very happy normally has nothing to do with material things. So Hazrat Abu Zar was very happy while he had nothing in his hands. And Hazrat Salman Farsi was very satisfied and he had nothing in his hand. And Mawla Amirul Mumneen, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa Abdul. The most blessed home on the earth was that of Amirul Mumineen and Sayyidai Tahira Salamullahi Alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wa Ajil. Without having any material resources. Now, how to be happy? I'm not talking more about their life because very distinguished, of course, very high. I'm talking about myself. So, I thought I need a few things. Don't want to see myself begging. Not only for money, but for help also. For social status also. Don't want to see myself begging. Number one, I don't want to live alone. What is the meaning of living alone? You might be living, someone might be living between 50%, but he is still alone. Not having someone who loves you is actually loneliness. Live with 100% or 50% doesn't matter. Not having anyone who loves you, that is loneliness. So I thought, I don't want to see myself begging, number one. Number two, I don't want to see myself being alone. And third thing, a bonus point, I wanted to have some social respect. So these were three objectives of my life. Number one, having enough resources, financial and other, not to beg. Number two, don't die alone. Live a life having loving people around you. those who love you, and more than that, those you love them. Sometimes it is difficult for this one, or sometimes become very difficult for the second one. And the third thing is having a social respect, a type of social respect, not arrogance, and not being proud of anything, but a type of social respect. So I thought, what to do? Yes, you have a lot of solutions, and one of the very common one is to earn a lot of money. And we know this is not the solution. We obviously know that. I hope there is no one who disagrees. We know that a lot of wealth sometimes never bring anything. Sometimes it looks that we have everything, but it never brings anything. So I thought, what is the solution? And then I came to a point in Islam that it is not in getting something, earning something, grabbing something, it is in giving something. So I realized a formula for everything. Three main objectives. And I realized a formula. There is a formula. Yes. Whatever you give, it comes back to you increased. Whatever you give. So if you are giving happiness, it will come back to you more happiness. If you are giving respect, you will get respect. And if you are giving attention and emotions, then you will get emotions and attachments. So there is a formula in Islam. And that formula asks you to start giving whatever you want to have. And that formula not only works for positives, it also works in negatives. So hatred will bring hatred. Ill intentions will bring ill intention. Na'uzubillah, if I planned against someone, be ready, a lot of people will plan against you. And if you are protecting someone just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, then alhamdulillah, you have a lot of protection. In many, many sayings of Ahlul Bayt and Quranic ayat, you can see this meaning clearly. Imam says, when you give someone, you are not giving, you are creating many hands who will give you actually. By giving someone, you are creating hands. And these hands will help you. So in my experience, I got this point that if I want to have something, I better start giving it now. So if I want respect, I will give respect. If I don't want disrespect, I will never give disrespect. So sometime when I say that, a few might be jokingly, they say, if we don't have anything to give, what we should give? So I say, at least smile. You can give without having anything. Number two, can you give du'as? Of course. If you are alone, sitting somewhere, just ask for others. That is your dua. And be assured that a lot of people will pray for you if you are praying for them. It will never stop until you stop. So this is one of the spiritual things which I could understand from sayings of Ahlul Bayt and Quranic verses, tens of Quranic verses and tens of sayings of Ahlul Bayt, pointing it by time is finished now for English. So this was the third point which I wanted to point out. Number one, 2 points yesterday. First one was just to talk Allah subhanahu wa ta'ala for 2 minutes. Second one was how to recite Tasbih bi Mazahir Salamullahi alayha. And the third one is always try to give something if you want to get something. And be very careful whatever you are giving others, because it will turn back to you. it will turn back to you. Be sure it will turn back to you. And one of the beautiful sayings of Amir Mu'mineen, every saying is beautiful, but this saying is very strange and very simple. He said, "Ad-dahru yawman," whole age is 2 days. One is for you, one is against you. If it is for you, don't be arrogant. And if it is against you, don't be disappointed. This is the essence of life. If it is with you, share it with others. It will increase. So, if I want to have more religion, I have to share religion. Give deen. If I want to have satisfaction, tranquility and peace in my life, better give this. You will have this, inshallah. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Channel change, اردو کا channel. اردو کے channel میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو زندگی اچھی کرنی ہے, صرف ظاہر کو اچھا نہیں کرو, باطن کو اچھا کرو. قول موجود ہے ہمارے پاس. امام نے فرمایا تمہیں زندگی اچھی چاہیے, تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ اچھے رہیں, تمہیں چاہیے تم خدا سے اچھے رہو. تم خدا سے اچھے رہو. تم چاہتے ہو تمہارا ظاہر اچھا رہے, تم اپنے باطن کو اچھا بناؤ. اچھا, باطن کو اچھا کیسے بناؤ؟ بہت پریکٹیکل بات کروں گا اینڈ پہ لے جاتے ہوئے. باطن کو اچھا کیسے بناؤ؟ دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچو. ایک وہ ایروگینس ہوتی ہے جو میں اوپر لے کر آتا ہوں تو وہ تو میں بہت ہی پاگل ہوتا ہوں, دوسرے لوگ سمجھ جاتے ہیں میں ایروگینٹ ہوں, پھر میری بے عزتی ہوتی ہے. ایک وہ ایروگینس ہوتی ہے جو میں اندر چھپا لیتا ہوں, سامنے ہمبلنس دکھاتا ہوں. یہ ایروگینس بھی ہے اور منافقت بھی ہے. یہ بہت ہی ٹپیکل سخت کیس ہے. وہ ایک بندہ تھا, انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر, کہنے کہ ایک بندہ گیا کسی پیر فقیر کے پاس, جو عقل مند آدمی ہوتے ہیں. بعض پیر فقیر جالی بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن ایک آدھ کہیں عقل مند بھی ہوتا ہے. تو اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ بیٹھ گیا, وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے تھے اپنی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. تو وہ گیا, اس سے کہا کہ میں ایروگینٹ ہوں, میری پرابلم سالو کرو. یہ بہت لکی آدمی ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے اس کی بیماری کیا ہے. بہت لکی ہوتا ہے, زیادہ تر لوگ نہیں ہوتے. زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں, میں دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہوں. ابھی میں سوچتا تھا شاید دنیا میں ایسے بیوقوفوں کی تعداد ختم ہو رہی ہوگی, لیکن ابھی لوگ مجھے بتاتے ہیں نہیں, ابھی بہت لوگ باقی ہیں ایسے کہتے ہیں. تو وہ گیا اس کے پاس, اس سے کہا کہ میں ایروگینٹ ہوں, میری بیماری ختم کرو. اس نے کہا, اچھا یہ دیکھو جو لوگ آ رہے ہیں نا, یہ سارے چپل اتار رہے ہیں, جوتے اتار رہے ہیں, تم جاؤ جو بھی جوتا اتارے اس کے پاؤں سے جوتے نکالو اور اس کو ایک طریقے سے آرگنائز کر کے رکھو, اور جیسے کوئی یہاں سے باہر نکلے اس کا جوتا اٹھا کے لاؤ, اس کے پاؤں کے نیچے رکھو, تو تمہاری ایروگینس صحیح ہو جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا, اس نے جوتے اتارے, یہ لیا, وہ کیا. تو ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی وہیں پہ جانے لگا جوتوں کی طرف. تو اس نے پوچھا, پیر نے پوچھا, تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا, استاد میں بھی ایروگینٹ ہوں تو میں بھی جا کے جوتے صحیح کروں گا. کہنے لگا, نہیں, تم ایروگینٹ بھی ہو اور منافق بھی ہو. تم جوتے صحیح کرو گے تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں کتنا اچھا آدمی ہے, تمہارا علاج کچھ اور کروں گا میں. تو اب ہمارے یہاں سمپل ایروگینس نہیں رہی ہے, ہمارے یہاں ایروگینس ہے منافقت کے ساتھ ہے. تو سامنے سامنے دکھاتا ہے بہت ہمبل ہے, بہت اللہ والا ہے, اندر پورا شیطان بیٹھا ہوا ہے. تو میں اس کے لیے ایک جملہ استاد سے سیکھا ہے, ایک استاد سے میں نے جملہ سیکھا. وہ کہتے تھے, بولتا قرآن ہے, اندر قارون ہے. قرآن بولتا ہے اور اندر کیا ہے؟ قارون. کیا مطلب؟ بولتا تو قرآن ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اور اندر کیا کہتا ہے؟ مال ہی سب کچھ ہے. تو بولتا قرآن ہے, اندر قارون ہے. اس سے جان چھوڑاؤ کہ اندر کیا ہے. اندر کو دیکھو, اندر کیا ہے, ڈیسیشنز کس کے اوپر لے رہے ہیں, کیا اچیو کر کے خوش ہو رہے ہیں, کس کی بیس پہ رسپیکٹ ملتی ہے, हमारी सोसाइटीज़ में सारी तकवा की बातें करते हैं, सारे ईमान की बातें करते हैं, इमाम हुसैन की बातें करते हैं, जब जब कम्युनिटी के अंदर डिसीजन लेने लगते हैं तो देखते हैं किसके पास ताकत ज़्यादा है। उधर तुम्हारा तकवा कहाँ जाता है? फिर सारा फैब्रिक जो बना हुआ है हमारी कम्युनिटीज़ का, सोसाइटी का, वो पैसे के ऊपर बना हुआ है। फिर बोलते हैं हमारे बच्चे क्या होगा, बच्चे और नहीं होंगे तो क्या होंगे? फिर ये रिचुअल्स हमें क्या बचाएंगे? हमें क्या रिचुअल्स नहीं बचाएंगे, हमें मीनिंग्स बचाते हैं। अंदर हम्बलनेस दिखाओगे तो आएंगी ना। अब एक आदमी के पास कुछ है, वो दूसरे को घास ही नहीं डालता है, अहमियत ही नहीं देता है, देता है तो सामने सामने तो देता है, अंदर से कहता है बाढ़ में जाए, इसकी क्या जरूरत है इसकी। तो भाई जब ये करोगे तो तुम्हारी सोसाइटी में मीनिंगलेस सोसाइटी बन जाएगी। ये हॉलो ड्रम बन जाएंगे सारे हम लोग, अंदर कुछ नहीं होगा हमारे। और ये औलाद हमारी ये दीन नहीं लेगी हमसे, फिर औलाद भाग जाएगी हमारे हाथ से। हमें मीनिंगफुल होना पड़ेगा, और मीनिंगफुल होने के लिए मुश्किल सारी ये है कि जिससे हम लोग अटैच होते हैं उससे हमें निकलना पड़ता है, वो अपने कंफर्ट जोन से कोई बाहर नहीं निकलना चाहता है, इसकी मुश्किल आती है। फिर परवरदिगार का शुक्र है हम लोग अहले बैत के मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी दुनिया भी अपनी वैल्यूज को चेंज करे, खुदा ने हमें अहले बैत का स्टैंडर्ड दे दिया। ये देखो सारी दुनिया तुम्हारी वैल्यूज को खराब कर रही हो ना, अहले बैत को देखो, उनसे सीखो वो कैसे थे। वो कैसे थे? वो ऐसे थे कि बीबी फिजा से कहती थी एक दिन मैं काम करूंगी एक दिन तुम काम कर। हु इज फिजा? नॉट हर सर्वेंट, फिजा उनकी स्लेव थी, कनीज थी, सर्वेंट नहीं थी। आज सर्वेंट कुछ और है, स्लेव कुछ और होता है। और वो किसको रिस्पेक्ट कर रही थी? स्लेव को। कहती थी एक दिन तुम आराम करो एक दिन मैं काम करूं। अभी हम लोगों को ये कहानियां लगती हैं, हमें कहानियां लगती हैं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी के अंदर जिन वैल्यूज के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी की है वो उनकी वैल्यूज नहीं है। उनका नाम है, वैल्यूज उनसे नहीं ली, वैल्यूज अपनी बनाई। और ये वो टफ क्वेश्चन है जो हमारे सामने। इमामत की नुसरत वर्ड से नहीं होगी, इमामत की नुसरत सब्सटेंस से होगी, मीनिंग्स से। ये हमको चेंज करना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं मौला का एहसान है, उन्होंने हमें अपना दीन दिया है, खुदावंद मुताल करम। अल्हम्दुलिल्लाह बीबी का नाम मौजूद है हमारे दर। और बीवी के लिए सिर्फ नाम मौजूद नहीं है, जज्बा भी मौजूद है। नाम तो देखो, क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस मौजूद है, हजरत ईसा का जज्बा भी मौजूद है। ये क्वेश्चन है यहां पे। खुदा ना करे, नाऊज़ु बिल्लाह, अगर हमने काम सही नहीं किया हमारे साथ ये ना हो जाए, हुसैन हो और हुसैनियत ना हो। बीबी का नाम तो हो और सैयदा की रूह ना हो। बीबी की रूह क्या है? नंबर एक, अल्लाह की बंदगी। नंबर दो, कनात। नंबर तीन, इज्जत और हया। नंबर चार, लोगों की खिदमत। नंबर पांच, इमामत की हिफाजत। यह सैयदा की रूह है, उनकी रूह इस तरह की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं समझ रहा हूं इस बात को कि हम लोगों के अंदर जो बहुत अच्छा है वो ये कि हमने सिर्फ नाम दीवारों पे नहीं लिखे हुए, अल्लाह का करम है हमारे दिल में उनके लिए जज्बे भी हैं। ये मौला का एहसान है। सिर्फ नाम नहीं है, जज्बा है, जज्बा है। मुझे सिर्फ डर क्या लग रहा है, खराब ना हो जाए कहीं। और कुछ चीजें सही नहीं है, उन चीजों को हमें सही करना पड़ेगा। ये जो जज्बा है ये वर्ड से निकले, एसेंस पर, रियलिटी पे पहुंचे, स्पिरिट के ऊपर पहुंचे। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज्बा होने की निशानी क्या है? 1400 साल के बाद कोई किसी पे नहीं रोता। जश्न में खड़े हो जाते हैं, खुशी में खड़े हो जाते हैं। क्रिसमस मना लेंगे, खुशी का वक्त है ना, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غم میں کون رو رہا ہے؟ نہیں، خوشی میں کھڑا ہونا آسان ہے، تو میں بولتا ہوں آؤ شب عاشور ہمارے پاس آؤ، اور دیکھو جب ہمارا کوئی بندہ امام حسین کے مصائب میں روتا ہے، اوپر سے روتا ہے یا دل سے روتا ہے؟ جب ہمارا کوئی روتا ہے پھر دل سے روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ چونکہ ہمارا ان سے ایک تعلق بنا ہوا ہے، الحمدللہ. اور میں نے اتنی دفعہ اس چیز کو آزمایا ہے کہ بھائی میں کہیں پر گیا، مجھے مصائب پڑھنے تھے، میں نے مصائب نہیں پڑھے، میں نے صرف اتنا کہا یتیم بچی پہ میرا سلام، وہ خود سمجھ جاتے تھے، کچھ نہیں کہتے، بولو پیاسے تنہا پر ہمارا سلام، لوگ خود ہی سمجھتے ہیں. اب اتنی شباہت ہے، دو تین دن سے میں مصائب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اتنی شباہت ہے سیدہ طاہرہ میں اور حسین کی یتیمہ میں، عجیب شباہت ہے. دیکھو دونوں جملوں کو دیکھنا، اگر میں آپ سے کہوں اس یتیمہ کو سلام جس کو تماشا لگا، سیدہ بھی یتیمہ ہے جس کو تماشا لگا ہے، اس یتیمہ کو سلام جس کا لاشا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے. اس مظلومہ کو سلام جس کے جنازے میں کوئی نہیں تھا. اس مظلومہ کو سلام جو روتی تھی تو گڑ گڑ کر آ کے روتی تھی، کھل کے رو نہیں سکتی تھی. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب عجیب مصائب ہیں، اور بی بی کے کچھ مصائب وہ ہیں جو ان کی زندگی میں پیش آئے، بہت سارے مصائب وہ ہیں جو ان کی دنیا کی زندگی کے بعد پیش آنے والے مصائب ہیں. ایسا ہمارے پاس روایت موجود ہے، اہل سنت کے پاس بھی موجود ہے، شیعہ کے پاس بھی موجود ہے. فرمایا امیر المومنین نے کہ جب فاطمہ کے کفن کو تیار کر لیا تو اسما بنت امیس سے کہا کہ اے اسما، حسن و حسین کو بلاؤ، اپنی ماں سے الوداع کر لیں. امام حسین تشریف لائے، اپنی ماں کو دیکھا اور کہا میں ماں کو الوداع نہیں کروں گا، میری ماں مجھ سے الوداع کرے گی. روایت کہتی ہے اسماء بنت امیس نے کہا کہ فرزند رسول، آپ کی ماں دنیا سے جا چکی ہیں، گویا شاید امام حسین نے کہا اسماء یہ میری ماں ہے، میری ماں ہے. اہل سنت کے منابع میں بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں خدا کی قسم فاطمہ کے کفن کے بند ٹوٹ گئے، فاطمہ کا ہاتھ برآمد ہوا، حسین کو اپنے وجود سے لگایا اور ایک ندائے غیبی آئی، اے علی بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو. ایسا یہ ایک الوداع ہے جو امام حسین نے اپنی ماں سے کیا ہے. ایک اور الوداع بھی ہے جب فاطمہ حسین کے پاس آئی ہے. اس الوداع میں بچہ ماں کے پاس آیا، اس الوداع میں ماں حسین کے پاس آئی ہے. جب سید الشہداء گودال قتلگاہ میں ہے اور وہ لعیر امام کی گردن پر اپنا خنجر چلانے والا ہے اور سیدہ طاہرہ کبھی حسین کو دیکھ رہی ہے، کبھی زینب کبرا کو دیکھتی ہے، على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار جنہوں نے سیدہ طاہرہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار، نسل سیدہ طاہرہ بالاخص ان کے فرزند کو کامیابی و نصرت سرفرازی نصیب فرما، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.